نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میری گفتگو کا عنوان ہے رحمتوں اور برکتوں کا چمکتا ہوا دن، جمعہ المبارک. آج جو ہے وہ پورے مغرب میں چھٹی منائی جا رہی ہے، کالجز، اسکول، دفاتر، بینکس، مارکیٹس سب بند ہیں، اور مغرب کی دنیا اسے گڈ فرائیڈے، گریٹ فرائیڈے کے نام سے یاد کرتی ہے. اور دراصل یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں منایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ قربان کیا پوری عیسائیت کی دنیا کے گناہوں کی وجہ سے. تو جب انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا تو انہوں نے قربانی دی، اور اس یاد میں جو ہے عیسائی یہ دن جو ہے وہ مناتے ہیں. اور پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ ایسٹر سنڈے جو ہے وہ آتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ روزہ بھی اور ان کی عبادت بھی اور بہت سی یہ چیزیں جو ہیں وہ کھانے پینے کی بھی چھوڑ دیتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان کے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم گڈ فرائیڈے کو کس معنی میں لیں گے. اس سلسلے میں ہمیں جو ہے وہ اسلام کی طرف دیکھنا ہوگا، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اسلام نے جمعے کے سلسلے میں کیا احکامات دیے ہیں، قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، احادیث سے ہمیں جمعے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے، اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ جمعے کی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے. جمعے کا دن اللہ کے نزدیک تمام دنوں میں افضل اور ممتاز ہے. اس دن کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی اور دن کو نہیں. اس سلسلے میں ایک بات جو یاد رکھنے والی ہے کہ جی میم عین اور آگے تائے مربوطہ ہے جمعہ، اس کے معنی کیا ہے؟ جی میم عین کے معنی ہے جمع ہونا، اور جمعہ جو ہے یہ دراصل ایک اسلامی اصطلاح ہے، اسلامک ٹرمز ہے. زمانہ جاہلیت میں بھی اہل عرب یہ دن مناتے تھے، لیکن وہ اسے یوم عروبہ کے نام سے یاد کرتے تھے. وہ جو تھے وہ اس دن جمع ہوتے. مورخین کہتے ہیں کعب بن لوئی یا قصہ بن کلاب نے بھی اس دن کے لیے یہ نام استعمال کیا تھا، کیونکہ وہ اس دن کو قریش کے لوگوں کو جمع کرتا تھا. اور جب اسلام آیا تو اسلام نے اس دن کا نیا نام رکھا، اور وہ کیا نام ہے؟ جمعہ. اور اس کے معنی کیا ہے؟ جمع ہونا. اس دن کو مسلمان جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن مسلمانوں کا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے، وہ کسی بھی مرکزی مقام پر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور مل کر ایک عظیم جماعت جو ہے وہ نماز جمعہ کی ادا کرتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو مسلمانوں کی عید کا دن قرار دیا ہے، جبکہ اہل عرب اسے یوم عروبہ کا نام سے یاد کرتے تھے. اور جو یہاں پہ جیسے آج کے دن جو ہے اس کو یہ گڈ فرائیڈے کے نام سے یاد کرتے ہیں. ایک بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے بھی ہفتے میں ایک دن عبادت کا مقرر کرنے کا رواج تھا. یہودیوں نے اس دن کے لیے جو ہے وہ ہفتے کے دن کا جو ہے وہ ہفتے کے دن کو مقرر کیا تھا عبادت کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چونکہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ آزادی دی تھی فرعون سے، اور یہودیوں نے اس دن کو جو ہے وہ ہفتے کا دن قرار دیا، اور وہ اس دن جو تھے وہ خوشی مناتے تھے. اور ویسے آپ دیکھیں کہ سب کا دن جو ہے کون سا دن تھا، کہ جس دن ان کو کہا گیا تھا کہ تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو ان کے ہاں یہ عبادت کا دن مقرر کیا تھا. اور یہ دن اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو دیا تھا اس کو عبادت کا دن مقرر کرو، کیونکہ بنی اسرائیل کو یہودیوں سے، بنی اسرائیل کو خاص طور پر جو ہے وہ آزادی ملی تھی، اور بنی اسرائیل کو آزادی فرعون سے ملی تھی، تو گویا شکرانے کے طور پر وہ ہفتے کے دن کو عبادت کا دن قرار دیتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عیسائیوں کے لیے جو ہے وہ، ان کے لیے کوئی ایسا حکم نہیں تھا کہ وہ کون سا دن مقرر کریں، تو انہوں نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر چڑھنے کی وجہ سے، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ وہ صلیب پر چڑھے، انہوں نے اپنی جان کی قربانی کی، تو عیسائیوں نے اپنی عبادت کا دن مقرر کیا، اور انہوں نے عبادت کا دن اتوار کا دن مقرر کیا، تاکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو یہودیوں سے ممیز کر سکیں، اپنے آپ کو یہودیوں سے علیحدہ کر سکیں۔ اور انہوں نے جب اتوار کا دن جو ہے مقرر کیا، نہ اللہ نے اس کا حکم دیا ان کو، اور نہ ہی انجیل میں کہیں اس کا ذکر ہے کہ وہ اتوار کا دن عبادت کے لیے مقرر کریں، تو انہوں نے اتوار کا دن کیوں مقرر کیا؟ اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ صلیب پر جان دینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتوار کے دن قبر سے نکل کر آسمان کی طرف گئے تھے، اسی بنا پر انہوں نے جو ہے وہ اسے اپنی عبادت کا دن قرار دے لیا۔ اور 321 میں رومی سلطنت نے ایک حکم کے ذریعے اس کو عام چھٹی کا دن مقرر کر دیا، اور اس طرح یہ گڈ فرائیڈے کے نام سے جو ہے اب، یہ چونکہ اتوار کا دن ہے لیکن اتوار سے پہلے جو فرائیڈے آتا ہے، تو اس دن یہ لانگ ویکینڈ کر کے چھٹی دے دیتے ہیں، اور اس طرح جو ہے گڈ فرائیڈے اور گریٹ فرائیڈے کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ اب اسلام نے ان دونوں ملتوں سے جو ہے وہ اپنی ملت کو، ان دونوں جو قومیں ہیں ان سے مسلمانوں کی قوم کو الگ کیا، اور دونوں دن چھوڑ کر جمعے کو اجتماعی عبادت کے لیے مقرر کیا۔ اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جمعے کو اجتماعی عبادت کے لیے کیوں مقرر کیا؟ اس لیے کہ اسلامی ذوق اس بات کا مطالبہ کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا دن ہونا چاہیے جس میں زیادہ سے زیادہ مسلمان جمع ہو کر اجتماعی عبادت کریں، اور اسلامی ذوق کا تقاضا یہ بھی تھا کہ یہ دن جو ہے نہ تو ہفتے کا ہونا چاہیے اور نہ ہی اتوار کا، کیونکہ ہفتے کا دن یہودیوں کا ایک شعار بن گیا، اور اتوار کا دن جو ہے یہ عیسائیوں کا جو ہے وہ ایک شعار ہے، یہ ان کا ایک خاص اسپیشل دن ہے، تو مسلمان جو ہیں وہ ایک الگ قوم ہے، اسلام مکمل دین ہے، اور اسلام جو ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ صرف مذہب کا نام نہیں ہے کہ چند رسمیں ادا کر کے یا چند دن منانے کے بعد ہم اپنی زندگی کو الگ کر لیں۔ اسلام ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور اسلام بھی کیسا کہ اللہ نے اس کو مکمل کر دیا، کہ آج میں نے تمہارے لیے اسلام کو مکمل کر دیا، اور میں اس بات پر راضی ہو گیا کہ تم جو ہے وہ دین اسلام جو ہے اس پر عمل کرو۔ تو اسلام کے معنی ہے مکمل اطاعت اور فرما برداری، کمپلیٹ اوبیڈینسی۔ اب اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ اسلام ہمیں جو ہے اپنا ایک الگ تشخص دیتا ہے، الگ وقار، اپنا ایک ریلیجن، اور اپنی ایک پہچان، لباس، رہنا سہنا، کھانا پینا، لینا دینا، ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، گھر کے اندر، گھر سے باہر، معیشت، معاشرت، سیاست، حتیٰ کہ گھر کے کمرے کے اندر کی جو چار دیواری ہے، خلوت سے لے کر جلوت، حتیٰ کہ حکومت کا جو تخت ہے، سیاست کا میدان، اس میں بھی اسلام جو ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسی کو لوگ کلچر کہتے ہیں، اسی کو لوگ ثقافت کہتے ہیں، ہے نا؟ تو عام طور پہ اگر دنیا کی نظر میں آپ دیکھیں تو کچھ دن منانا یا جو ہے وہ کچھ دنوں کی تقلید کرنا، اس کو لوگ کلچر کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اسلام جو ہے یہ ایک سدا بہار دین ہے، مکمل دین ہے، جوانوں کا بھی ہے، بوڑھوں کا بھی ہے، اور انفرادی زندگی میں بھی ہے، اجتماعی زندگی میں بھی ہے، خوشیوں کا بھی ہے، غموں کا بھی ہے۔ اور اسی طرح ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو کہ وہ دن منانے کے لیے کسی اور قوم کے پاس جائیں، या वो जिंदगी के किसी एक मैदान में किसी और कौम से जो है वो रहनुमाई लें। जैसे अब यहाँ पे हम रह रहे हैं और ये गुड फ्राइडे के नाम से पूरे मगरिब में छुट्टी है, तो छुट्टी मनाते हुए या इसको सेलिब्रेट करते हुए हमें ईसाइयों का अकीदा जो है वो अपने जेहन में नहीं रखना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि हमें अपनी इंटेंशन जो है ना उसको प्योरीफाई करना चाहिए, हमें इसको पाक करना चाहिए और ये सोचना चाहिए, इस बात पर गौर करना चाहिए कि ये दिन क्यों मनाते हैं और हमारे यहाँ जुमे की क्या अहमियत है। तो हमें ये पता चल गया कि ये ईसा अलैहिस्सलाम की याद में मनाते हैं कि पूरी ईसाइयत कौम जो है उनके गुनाहों की वजह से उन्होंने अपने आप की कुर्बानी दे दी और उस याद में जो है ये दिन मनाते हैं। हालांकि वो दिन इतवार का था लेकिन उससे पहले के जुमे को ये गुड फ्राइडे के नाम से याद करते हैं और मुख्तलिफ फिर इनकी जो पार्टीज या जो जो भी ये मामला जो है वो तय करते हैं सिलसिले में। एक बात जो याद रखने वाली है वो ये कि हमें इस्लाम ने इनके साथ तशब्बो से मना किया है, तशबीह से या इनकी नकाली से मना किया है। कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खालिफ अल यहूद, यहूदियों की मुखालफत करो, कहीं का खालिफ अल मजूस, मजूसियों की, और कहीं का खालिफ अल मुशरिकीन, मुशरिकीन की। और इस सिलसिले में हमें बहुत सी रहनुमाई मिलती है। मसलन एक मौके पर आपने फरमाया दीन उस वक्त तक गालिब रहेगा जब तक मुसलमान अफ्तार में जल्दी करते रहेंगे, इसलिए कि यहूदो नसारा इसे मौखर करते हैं। इसे अबू दाऊद ने रवायत किया है। इमाम मुस्लिम की रवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहले किताब और हमारे रोजों में ये फर्क है कि हम सहरी खाते हैं और ये नहीं खाते। फिर इसी तरह आप देखिए कि बिल्कुल जब इस्लाम का इब्तदाई जमाना था तो उस वक्त नमाज के लिए मुसलमानों को जमा करने के तरीके पर मशवरा हो रहा था। किसी ने कहा कि सिंक बजाकर मुसलमानों को इकट्ठा किया जाए, आपने इसको नापसंद किया, आपने फरमाया ये तो यहूदियों का अमल है। एक और साहिब ने नाकूस का मशवरा दिया, आपने कहा कि नहीं ये तो नसारा की चीज है। और फिर इन दोनों तरीकों से जुदा और मुनफरिद तरीका जो था वो इख्तियार किया गया और वो क्या था, अजान का तरीका। इसे बुखारी ने रवायत किया है। अब इससे क्या बात पता चलती है कि इबादत में भी हम जो है वो अहले किताब के साथ या किसी गैर जो कौम है उसके साथ मुशाबियत नहीं कर सकते, रिजेंबलेंस नहीं रख सकते, इबादत में भी नहीं रख सकते। तो फिर हमें फिर आम दिनों में जैसे अब दिन मनाया जा रहा है जुमे का, तो जैसे यूथ की तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा है और आम औरतें भी पूछ रही थी कि ये दिन जो है ये क्यों मनाया जा रहा है, तो इस सिलसिले में याद रखें कि मुसलमान दो ही दिन मनाते हैं, एक ईद उल फित्र का और दूसरा ईद उल अजहा का। और ये दोनों दिन जो हैं हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलते हैं। लेकिन जैसे इस मौके पर हम ये देख लेते हैं कि जुमा जो है इसकी इस्लाम में क्या अहमियत और फजीलत है। एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का एहतमाम जुमे रात ही से शुरू कर देते थे और फरमाते थे कि जुमे की रात सफेद रात है और जुमे का दिन रोशन दिन है। इसे मिशकात ने रवायत किया है। फिर आप देखिए कि ये बुखारी और मुस्लिम की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में हमारी आमद का जमाना सबके बाद है लेकिन कयामत के दिन हम सबसे आगे जन्नत में जाने वाले हैं। इन यहूदो नसारा को हमसे पहले किताब हदायत दी गई और हमें बाद में दी गई और इन सब पर ताजीम जुमा फर्ज की गई थी लेकिन इन लोगों ने इसमें इख्तलाफ किया और अल्लाह ने हमें इस पर कायम रहने की तौफीक बख्शी, लिहाजा ये सब ही हमसे पीछे हैं। यहूद कल के दिन हफ्ते की ताजीम करते हैं और नसारा परसों के दिन इतवार की ताजीम करते हैं। और अल्लाह ने कौन से दिन की ताजीम करने का हुक्म दिया था, जुमे का दिन, और उन्होंने इसको जो है वो तब्दील कर लिया, एक ने हफ्ता मुकर्रर कर लिया और एक ने इतवार, और जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाहते थे कि जुमा का दिन जो है वो उसकी ताजीम की जाए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं यौम जुमा की बरकतों से दरहकीकत वही मोमिन माला माल होता है जो इसके इंतजार में घड़ियां गिनता रहता है और वो गफलत शियार हो तो इंतहाई बदनसीब है। क्या बात पता चली कि जो सच्चा मुसलमान है वो जुमे का इंतजार करता रहता है। क्यों इंतजार करता है, क्योंकि जुमे के दिन बहुत सी रहमतें, बरकतें और सआदतें जो हैं वो मिलती हैं। किसको मिलती हैं? जो इसका इंतजार करता है और जिसे इसका शऊर होता है। अब आप देखिए कि बहुत ही खूबसूरत हदीस है, इसे इससे ही मुस्लिम ने रवायत किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरु यौमिन तलअत फीही शम्सु यौमुल जुमुआ वफीही खुलिक आदमु अलैहि सलाम वफीही उदखिला इलल जन्ना वफीही उखरिजा फीहा वला तकूमु सातु इल्ला फी यौमिल जुमुआ। जुमे का दिन तमाम दिनों में अफजल है, इसमें आदम अलैहि सलाम की तखलीक हुई, बहिश्त में जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन वहां से निकाले गए और कयामत भी जुमे के दिन ही कायम होगी। अब आप देख लीजिए कि जुमे का दिन दुनिया के तमाम दिनों से अफजल और अजीम है। इसका दिन चमकता हुआ और इसकी रात जो है वो सफेद है, चमकती हुई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दिन को अजमत दी है। जरूरी है कि इस दिन कसरत से नेकियां की जाएं और गुनाहों से इज्तनाब किया जाए। अब आप हम देख लेते हैं कि जुमे का दिन जो है इस सिलसिले में कुरान क्या हुक्म देता है। नमाज जुमा फर्ज है और ये किन लोगों पर फर्ज है? इस सिलसिले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, लोग जुमा छोड़ने से बाज आ जाएं या फिर अल्लाह इनके दिलों पर मोहर लगा देगा और फिर वो गाफिलों में से हो जाएंगे। और आपने एक मौके पर फरमाया, जुमा जमात के साथ हर मुसलमान पर हक और लाजिम है, अलबत्ता चार किस्म के लोगों पर वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है। गुलाम, औरत, बच्चा और बीमार। हम अब देख लेते हैं कि जुमे के आदाब क्या हैं। नंबर एक, जो जुमे में शरीक हों वो नहा लें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्लुल जुमाती वाजिबुन अला कुल्ले मुस्लिम। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है। जुमे के दिन हर मुसलमान बालिग पर गुस्ल फर्ज है, वाजिब है। नंबर दो, अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहने और खुशबू इस्तेमाल करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला कुल्ले मुस्लिम गुस्लु जुमुल यौमुल जुमा अला कुल्ले मुस्लिमिन अलगुस्लु यौमुल जुमा वयलबसु मिन सालेही सियाबे वइन काना लहू तीबुन मस्ता मिन। तमाम मुसलमान जुमा के दिन गुसल करें और अच्छे कपड़े पहने और अगर खुशबू है तो उसे इस्तेमाल करें। तो अपने पास जो कपड़े हैं उनमें से अच्छे कपड़ों का इंतखाब करना और फिर जो है वो गुसल करने के बाद वो अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नंबर तीन, नमाज और खुतबे के वक्त से पहले मस्जिद में आना बेहतर है, इसलिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन गुस्ले जनाबत करे, नापाकी का जो गुस्ल है उससे वो पाक हो जाए और पहले ही वक्त में चल पड़े तो गोया इसने अल्लाह को राजी करने के लिए एक ऊंट दिया, एक ऊंट का सदका, जो दूसरे वक्त में जो है वो जाए, गोया इसने अल्लाह को राजी करने के लिए गाय जो है गाय दी, जो इसके बाद तीसरे वक्त में आए तो इसने जो है वो सींग वाला एक मेंढा, एक दुम्बा दिया, और जो चौथे वक्त में जाए वो ऐसे है जैसे इसने मुर्गी की कुर्बानी दी, और जो पांचवें वक्त में जाए गोया इसने मुर्गी का अंडा कुर्बानी में दिया। और जब इमाम खुतबे के लिए आता है तो फरिश्ते जिक्र सुनने के लिए हाजिर हो जाते हैं। इस हदीस से क्या बात पता चलती है कि जो जितना जल्दी आता है वो उतना ज्यादा अजर जो है वो समेटता है। तो जल्दी आने की बात को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कैसे बयान किया कि जो सबसे पहले आता है गोया उसने जो है वो ऊंट की कुर्बानी दी, जो उसके बाद आएगा तो उसने गाय की, जो उसके बाद आएगा तो उसने दुम्बे की या बकरे की, और जो उसके बाद आएगा चौथे नंबर पर तो उसने मुर्गी की, और जो उसके भी बाद आएगा तो उसने जो है मुर्गी के अंडे की। और यहां तक के इमाम जब खुतबा देना शुरू कर देता है, यानी इमाम खुतबे के लिए आ जाता है, तो फरिश्ते जिक्र सुनने के लिए फिर हाजिर हो जाते हैं। वो रजिस्टर खोल कर बैठे हुए हैं और वो रोल कॉल ले रहे हैं जो लोग जुमे के लिए आ रहे हैं। आप जरा तसव्वुर करें कि वो फरिश्ते बैठे हुए हैं और वो लोग जो जुमे के लिए आ रहे हैं, फरिश्ते हर आने वाले का नाम उसकी आमद के तरतीब के साथ लिखते जाते हैं, और जब इमाम खुतबे देने के लिए जो है मिंबर पर आ जाता है तो वो नाम लिखना बंद कर देते हैं और फिर वो खुतबा जो जिक्र है अल्लाह का उसको सुनने में मसरूफ हो जाते हैं। तो इससे हम सबको जो है वो सोचना चाहिए कि जुमे की नमाज के लिए जो है वो खुतबा शुरू होने से पहले पहुंच जाए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो अजर मिले। तो खुतबा शुरू होने से पहले कौन पहुंचेगा? जिसे नेकियों का शौक होगा। फस्तबिकुल खैरात फलयतनाफसिल मुतनाफिसून वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम वजन्ना। जिन्हें जन्नत चाहिए, जिन्हें रब की रजा चाहिए, जिन्हें अपने गुनाहों की माफी चाहिए, तो वो इंसान तो सोचेगा, वो मुसलमान तो सोचेगा कि मुझे जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो अजर मिले और फरिश्तों के रजिस्टर में मेरी रोल कार में मैं टॉप ऑफ द लिस्ट हूं, नंबर वन, नॉट के रजिस्टर बंद हो जाए और फिर मैं जो है वो नमाज जुमे के लिए जो है वो मस्जिद में पहुंचू। नंबर चार, मस्जिद में दाखिल होने के बाद जितने नवाफिल आसानी से पढ़ सकें वो जरूर पढ़ने चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन गुसल करता है और इस्तेताअत के मुताबिक अच्छी तरह वुजू करता है और तेल या खुशबू लगाता है और फिर मस्जिद में पहुंच जाता है और दो आदमियों में तफरीक नहीं करता, जो दो लोग बैठे हुए हैं ना उनको अलग नहीं करता, उनके बीच में घुस के नहीं बैठता, और जो इसके लिए मुकद्दर है नमाज पढ़ता है फिर इमाम के खुतबे में खामोश रहता है, तो अगले जुमे तक इसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं बशर्ते कि वो गुनाह कबीरा का इर्तकाब ना करें। इससे क्या बात पता चलती है कि अब आप देखें कि इस हदीस से भी ये बात पता चल रही है कि गुसल करना, वुजू करना, खुशबू लगाना, और जब जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में आ जाएं तो उसके एहतमाम रखना, जुमे की फजीलत का और अहमियत का जो है वो उसके आदाब का ख्याल रखना। अब बाज लोग होते हैं कि आते लेट हैं लेकिन वो पहली सफ में आकर बैठना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, सफों को चीरते हुए लोगों के कंधों पर जंप करते हुए छलांग लगाते हुए इधर उधर होते हुए तो सबसे पहली सफ में लोगों को दरमियान में से हटाकर बैठने की कोशिश करते हैं। इस चीज को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद किया। फिर नंबर दो, जब आ जाते हैं तो बातें करने लगते हैं, इधर की बात उधर की बात, और आप ये बात याद रखें कि खुतबा जो है नमाज की तरह है, क्योंकि आमतौर पर जोहर की नमाज में आप कितने फर्ज पढ़ते हैं, कितने फर्ज पढ़ते हैं, चार फर्ज पढ़ते हैं, और जुमे की नमाज की कितनी रखते हैं, दो रखते हैं, जुमे की नमाज की कितनी रखते हैं, दो रखते हैं, तो जो दो रखते हैं ना वो तो जुमे की नमाज की है, और जुमे का जो खुतबा है ना वो उन दो रक्तों की जगह है, तो नमाज पढ़ते हुए जैसे बोलते ही नहीं है ना, बिल्कुल इसी तरह जब खुतबा हो रहा हो तो उस वक्त बात करना जो है ये मना है। अदब नंबर पांच, इसलिए मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जुमे के दिन इमाम खुतबा दे रहा हो और तू अपने साथी को कहे कि खामोश हो जा तो तूने लग्व काम किया। लग्व काम कौन सा होता है, फजूल, फजूल काम, गलत काम। तो अब आप ये कि आप नहीं बात कर रहे, आप तो खामोशी से खुतबा सुन रहे हैं और जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं वो बातें कर रहे हैं, और आपने क्या किया, आपने चाहा कि लोगों को खामोश करवाया जाए, तो इस हिस्से में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना किया कि आप किसी को बोल कर ये कहें कि आप जो है ना खामोश हो जाएं। क्यों? इसलिए कि खुतबे के दौरान बात करने वाला खा वो किसी को चुप ही कराता है तो वो ऐसे है जैसे कि उसने फजूल और बेहुदा हरकत की, गलत हरकत की। इस सिलसिले में एक और हदीस आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनिए, बहुत ही डराने वाली है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम खुतबा दे रहा हो उस वक्त जो शख्स बात करे वो उस गधे की मानिंद है जिस पर किताबें लदी हुई हों, और जो शख्स उससे कहे चुप रह इसका भी कोई जुमा नहीं हुआ। इसे मुसनद अहमद ने रवायत किया है। तो बुखारी, मुस्लिम, मुसनद अहमद की जो है इन रवायात से हमें क्या बात पता चलती है कि जब जुमे का खुतबा हो रहा है, इमाम खुतबा दे रहा है, बहुत खामोशी के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ बैठना चाहिए और जुमे का खुतबा जो है उसको सुनना चाहिए। आपने एक मौके पे ये भी फरमाया, जो किंकरियों को हाथ लगाए उसने लगव काम किया, बेहुदा काम किया, और जो लगव काम करे इसका जुमा नहीं है। इसे अबू दाऊद ने रवायत किया, मन मसल हसा फकद लगा व मन लगा फला जुमा आता लह। तो किंकरियों को हाथ लगाने का क्या मतलब है, यानी आपके पास कुछ चीज है, आप हाथ से उससे खेल के जा रहे हैं, तो खेल कूद करना, शगल करना, हंसना वगैरह, या कोई भी ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये जुमे के आदाब के खिलाफ है। इस्लाम जो है हमारी रहनुमाई करता है, हमें बताता है कि हमें जो है वो जुमे का कैसे अदब और एहतराम करना चाहिए। नंबर 6, अगर कोई शख्स मस्जिद में इस वक्त आता है जब इमाम ने खुतबा देना शुरू कर दिया है, तो अब वो क्या करे, खुतबा दे रहा है इमाम, तो इस सिलसिले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई जुमे के दिन इस वक्त आए जब इमाम खुतबा दे रहा हो, तो वो 2 रकते पढ़ ले और इनमें तख़फीफ से काम ले, हल्की रकते, छोटी रकते, जल्दी जल्दी 2 रकते जो है पढ़ ले। इसे से ही मुस्लिम ने रवायत किया है कि जो है वो मतलब जो लोग चाहें तो वो 2 रकत जो है वो पढ़ सकते हैं, और जो लोग ना चाहें, क्योंकि इसमें भी इख्तलाफ है, बाज लोग ये कहते हैं कि जब इमाम खुतबा देना शुरू कर दे तो फिर जो है वो आकर बैठ जाना चाहिए और इमाम का खुतबा जो है वो सुनना चाहिए। फिर आप देखिए कि इस हिस्से में एक और अहम बात कि जब जुमे की अजान हो जाए तो खरीदो फरोख्त हराम है, और इसके लिए सूरत अल जुमा की आयत नंबर 9 ये बहुत अहम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान लाने वालों को मुखातिब करके फरमाया जा रहा है, इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रउल बैअ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, जब पुकारा जाए नमाज के लिए जुमे के दिन, तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख छोड़ दो। फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह, तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, और क्या चीजें छोड़ दो, वज़रुल बैअ। अल बैअ का लफ्ज जो है ये ज़विल अज़दाद में से है, ये एक वक्त में 2 मीनिंग देता है, अपोजिट मीनिंग, खरीदना भी और बेचना भी, ना आप खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, क्या करें, वज़रु छोड़ दो, वज़रु छोड़ दो। तो इसको ये खरीदो फरोख्त तो उस वक्त हकीर है, और वजर के मानी होते हैं किसी चीज को हकीर समझ कर छोड़ देना। तो ये आमतौर पे जब हम खरीदो फरोख्त करते हैं, तिजारत, बिजनेस, ऑफिस, जॉब, जो भी अपना काम कर रहे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम डॉलर कमा रहे होते हैं ना, हमारे शौहर, हमारे बाप, हमारे बेटे, हमारे भाई, या जो लोग भी जॉब करते हैं, तो बहुत उसको अहम समझ कर जॉब कर रहे होते हैं। कहा कि नहीं, अब वो हकीर है, वो जायज नहीं है, जुमे की नमाज के लिए जब तुम्हें बुलाया जाए, अल्लाह के जिक्र के लिए जब तुम्हें बुलाया जाए, तो उसको छोड़ दो और क्या करो कि अल्लाह के जिक्र की तरफ आओ। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, इन कुंतुम तालमून, अगर हो तुम जानने वाले। एक आयत में 3 बातें बताई गई हैं। पहली चीज कि जब जुमे की मुनादी हो, मुनादी के मानी अजान के हैं। दूसरी बात कि ऐसी नमाज जो कि खास तौर पर जुमे ही के दिन पढ़ी जाती है क्योंकि जुमे के लिए बुलाया जाए। नंबर तीन, अब यहां पर यह बात बताई जा रही है कि जुमे की मनादी सुनने के बाद, जुमे के लिए ऐलान सुनने के बाद जो अजान की सूरत में होता है, तो उस वक्त जो है ना सुस्ती नहीं करनी चाहिए, कोई काहली नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि खरीदो फरोख करने लगे, ऐसा ना हो कि अच्छा जो मैं ये काम कर रहा हूं या कर रही हूं मैं इसको खत्म कर लूं। खास तौर पे जैसे मर्दों पर ये फर्ज है तो वो उसमें लगे रहे। नहीं, डॉक्टर गुलाम मुर्तजा रहमतुल्लाह अलैह शहीद कर दिए गए और अपना वो एक वाकया बताते हैं कि मैं सऊदीया में था और रियाज में, और मैंने जो है वो एक दुकान से जो है वो अटैची खरीदा। कह रहे हैं कि अटैची जो है मैंने खरीद लिया, बहुत और करने के बाद आपको पता है ना कि कीमत करके काफी देर लगती है, और जब मैं जो है ना उसके पैसे देने वाला था तो इतने में मस्जिद से अजान की आवाज आने लगी, जुमे का दिन था, और मैं पैसे देना चाहता था और उस शख्स ने अपना हाथ जो मेरी तरफ बढ़ाया हुआ था दुकानदार ने वापस खींच लिया और उसने कहा कि शेख हाजा हराम, हाजा हराम, कि अब जो है ना मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मैंने उसे कहा कि अब सौदा हो चुका है और अब तो सिर्फ मैंने अटैची उठाना है, पैसे देने हैं, अटैची उठाना है, तुमने पैसे अपनी पॉकेट में डालने हैं, कुछ भी नहीं। उसने कहा कि नहीं, हाजा हराम, कि तुम मुझे गुनाहगार मत करो। मैंने उसे कहा कि मैंने कहीं दूर जाना है और वहां पे जाके जुमा पढ़ना है और मेरा वहां पे लेक्चर भी है। तो उसने कहा कि नहीं, अटैची कहीं और से खरीद लो, मुझे गुनाहगार नहीं करो, मुझे मजबूर नहीं करो, हाजा हराम, हाजा हराम कहता हुआ उसने जो है वो अटैची को रख लिया, अपनी दुकान को बंद किया और वो चल पड़ा। अब आप देखें कि इस वाक्य से क्या बात पता चलती है कि अल्लाह वाले और अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह की आयात को जिंदा करने वाले ऐसे लोग होते हैं कि उधर अजान की आवाज आई और उधर जो है उन्होंने फौरन जो है वो उसकी जो है वो तैयारी करनी शुरू कर दी। तो जुमे के वक्त में, जुमे की मखसूस नमाज के वक्त में खरीदो फरोख्त करना जो है ये जायज नहीं है, ये हराम है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत जुमा में इसके बारे में रहनुमाई की है। तो इस सिलसिले में हमारे वो भाई और बाप और बेटे और मुसलमानों में से वो मर्द हजरात जो कि जुमे की नमाज ही नहीं पढ़ते या अपनी जॉब में मसरूफ हैं या जुमे जुमे के दिन का या जुमे की नमाज का एहतमाम नहीं करते, उनको जरूर जो है वो सोचना चाहिए। और ये हदीस बहुत डराने वाली है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो एक मौके पे फरमाया, लोगों को चाहिए कि वो जुमे की नमाज छोड़ने से बाज आ जाएं वरना अल्लाह इनके दिलों पर मोहर लगा देगा और फिर वो गफलत में मुब्तिला होकर रहेंगे। और फरमाया जिसने जुमे की अजान सुनी और फिर नमाज के लिए नहीं आया, फिर दूसरे जुमे को सुनी और नहीं आया, इस तरह मुसलसल तीन जुमे उसने किया कि अजान सुनी और जुमे के लिए नहीं आया, अल्लाह ने इसके दिल पर मोहर लगा दी। इसके दिल पर मोहर लगा दी जाती है और इसका दिल मुनाफिक का दिल बना दिया जाता है, इसे तिब्रानी ने रवायत किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो इस पर नमाज जुमा लाजिम हो जाता है, फिर जो किसी खेल तमाशे या कारोबारी मसरूफियत की खातिर इससे बेपरवाही बरते तो अल्लाह इससे बेनियाजी बरतेगा और वो पाक और बेनियाज है। फिर एक मौके पे फरमाया, जो कोई किसी माजूरी और जरूरत के बगैर नमाज जुमा छोड़ दे इसका नाम मुनाफिक की हैसियत से इस किताब में लिख लिया जाएगा, जिसका लिखा ना मिटाया जा सकता है और ना बदला जा सकता है। मिशकात किताबुल जुमा। और कौन सी किताब है जिसे ना लिखा जा सकता है ना मिटाया जा सकता है? लोहे महफूज, लोहे महफूज कि वो किताब जो अल्लाह के हाँ जो है महफूज है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस जिसे सही मुस्लिम ने रवायत किया है, ये बहुत ही डराने वाली है। फरमाया मेरा जी चाहता है कि अपनी जगह किसी को नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दूं और खुद जाकर इन लोगों के घरों को आग लगा दूं जो जुमे की नमाज में आने की बजाय घरों में बैठे रहते हैं। حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے غفلت کی وجہ سے مسلسل کئی جمعے چھوڑ دیے، اس نے اسلام کو پسے پش ڈال دیا، اس نے اسلام کو ہی جو ہے وہ چھوڑ دیا. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. میری پیاری بہنوں، آج کا دن جو ہے اس اعتبار سے بہت اہم دن ہے کہ آج جو ہے وہ آج کے دن پوری جو مغرب کی دنیا ہے اس میں چھٹی کا دن ہے، اور ہمارے شوہر، باپ، بیٹے، بھائی، تمام مردوں کو مغرب کی دنیا میں چھٹی ہے. اب آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں نے پکنک کا پروگرام بنایا ہوا ہے، وہ پکنک میں گئے ہوئے ہیں. تو یعنی وہ گڈ فرائیڈے جو ہے وہ بنا کر اگر وہ پکنک پر گئے ہیں، لیکن اگر انہوں نے جو ہے وہ جمعے کی نماز کا اہتمام نہیں کیا، تو آپ سوچ لیں کہ پھر ان کا یہ دن کیسا دن ہے، پھر ان کا نام جو ہے وہ کن لوگوں میں ہے. تو یہ والا آج کا دن ہو، یا پھر یہ کہ آج کے دن کا جمعہ ہے، یا پھر کوئی بھی جمعہ ہے، مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور خاص طور پر مردوں کی جن پر جمعہ جو ہے وہ فرض ہے، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ جاب کے لیے بھی اپلائی کریں، جاب کا انٹرویو دیں، تو وہ ضرور بات کریں کہ ہم نے جو ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمیں جمعے کی نماز ہم پر فرض ہے، اور ہم چھٹی جمعے کے دن جو ہے وہ چھٹی لیں گے. وہ کہ ان کو پانچ وقت کی فرض نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کی بھی بات کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی جمعے کی نماز کا اہتمام کرنا اور اس کا اہتمام کرنا، اس کے لیے بات کرنا، یہ بہت ضروری ہے اور سب کو پتہ ہے. اور میں مبارکباد دیتی ہوں اپنی یوتھ کو. ماشاءاللہ ہماری یوتھ نے پبلک سکولوں میں، کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جو ہے وہ جمعے کی نماز کا اہتمام کیا ہے. انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ سکولز میں جو ہے وہ اجازت لے کر ایک روم جو ہے وہ نماز کے لیے مقرر کیا ہے، اور اس دن جو ہے وہ لڑکے جو ہیں وہ جمعہ پڑھاتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ لڑکیاں بھی جو ہے وہ جمعہ پڑھتی ہیں. تو اسی طرح ہمارے وہ تمام مسلمان مرد بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنے آفیسز میں ہاسپٹلز ہیں، اپنے اسلامک سینٹر ہیں، اور یا پھر یہ کہ بڑے بڑے جو تجارت کے سینٹر ہیں جیسے اسکوئر ون ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ جمعے کا اہتمام کیا گیا ہے، یا پھر یہ کہ ڈاؤن ٹاؤن ٹورنٹو میں یا منہیٹن نیو یارک میں بھی جو ہے وہ ایک جگہ ہے جہاں پہ جو ہے جمعے کا اہتمام ہے، اور اب تو مساجد بن چکی ہیں ماشاءاللہ. یعنی امریکہ میں، کینیڈا میں اور مغرب کی دنیا میں جگہ جگہ مساجد ہے جہاں پہ جمعے کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو تمام جو مرد حضرات ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جمعے کا اہتمام کریں. آپ دیکھیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر بھیجی، اس میں یہ حکم لکھ بھیجا کہ وہاں جمعہ قائم کریں. تو ابتدائی مہاجرین کے سردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے 12 آدمیوں کے ساتھ مدینہ میں پہلا جمعہ پڑھا. آپ نے جو ہے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ آپس میں طے کر لیں کہ ہفتے میں ایک دن مل کر اجتماعی عبادت کریں گے، اور بتایا مسلمانوں کی رہنمائی کی کہ عیسائی اتوار کے دن اور یہودی ہفتے کے دن، اور مسلمان جو ہے یہ دن جمعے کے دن جو ہے اکٹھے ہوں گے اور اجتماعی طور پر عبادت کریں گے. اور اسی طرح حضرت اسد بن زرارہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بنی بیازہ کے علاقے میں پہلا جمعہ پڑھایا، جس میں 40 لوگ جو ہیں وہ شریک ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو اولین کام کیے، ان میں سے ایک جمعے کی اقامت بھی تھی کہ مکہ سے ہجرت کر کے آپ پیر کے دن قبا پہنچے، 4 دن وہاں آپ ٹھہرے، 5ویں دن جمعہ کے دن آپ وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں بنی سالم بن عوف کی مقام پر تھے کہ نماز جمعہ کا وقت آ گیا، اسی جگہ آپ نے پہلا جمعہ جو ہے وہ ادا کیا. سیرت ابن حشام. تو اس سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ آپ سفر میں بھی ہیں تو جمعے کا اہتمام کریں، آپ کہیں بھی جا رہے ہیں تو جمعے کا جو ہے وہ اہتمام کریں، اور جمعے کے دن کے تمام آداب کا خیال رکھیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک اذان ہے جو کہ خطبے سے پہلے دی جاتی ہے، और ये अजान खुतबे से काफी पहले दी जाती है। इसका मकसद लोगों को इत्तला देना है कि ए मुसलमानों, जुमे का वक्त शुरू हो चुका है। और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या होता था कि एक ही अजान होती थी और वो इमाम के मिंबर पर बैठने के बाद दी जाती थी। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में भी यही अमल होता रहा कि एक अजान होती थी। लेकिन जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का जमाना आया तो आबादी बहुत फैल गई, बढ़ गई, तो उन्होंने पहले एक और अजान दिलवानी शुरू की, जो मदीने के बाजार में इनके मकान, उनका मकान जो था, उनका घर जौरा, उस पर दी जाती थी, से बुखारी ने रवायत किया है। तो पहले जो पहली अजान होती है उसका मतलब है जुमे का वक्त जो है वो शुरू हो चुका है और लोग जो है वो जुमे के लिए आ जाएं। जब दूसरी अजान दी जाती है तो इसका ये मतलब है कि अब इमाम जो है वो खुतबा देने के लिए मिंबर पर जो है वो आना चाहता है और उसके आने का वक्त हो गया है। तो इससे फिर हमें ये बात पता चलती है कि जुमे के दिन जो है वो उसका एहतमाम किया जाए और उसके लिए जो है वो तैयारी की जाए। तो आइए हम सब जो है वो नियत करें, और हम में से जिनके भी जो है वो मर्द हजरात यहाँ पर है तो उन्हें भी जो है ना इसकी अहमियत और इसकी फर्जियत के बारे में जो है वो आगाह करें। और यहाँ पे सूरत अलजुमा की जो आयत नंबर 9 है, इसमें जिक्रिल्लाह का जो लफ्ज है इसके मानी क्या है? अल्लाह की हम्दो सना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद, और वो तमाम काम करना जिसकी तलकीन शरीयत ने की है, अल्लाह से डरना, क्योंकि कहा कि अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। इसके मानी क्या है? इसके मानी है कि जल्दी जल्दी वहां पहुंचने की कोशिश करो। इसका ये नहीं मतलब कि आप भागते हुए आए, बल्कि ये कि एहतमाम के साथ जल्दी जल्दी वहां पर जो है वो पहुंचने की कोशिश करें। क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज खड़ी हो तो इसकी तरफ सुकून और वकार के साथ चलकर आओ, भागते हुए ना आओ। फिर जितनी नमाज भी मिल जाए इसमें शामिल हो जाओ, और जितनी छूट जाए उसे बाद में पूरी कर लो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बस सिर्फ भागने पर जोर लगाया जाए, बल्कि ये कि पहले से ही पता है, जुमेरात को ही पता है कि कल जुमा है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात से ही जुमे की तैयारी शुरू कर देते थे। और नमाज जुमे की हो या कोई भी नमाज बाजमात जिसके लिए मस्जिद में जो है आप आ रहे हैं, तो उसके लिए सुकून और वकार के साथ। हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हों की रवायत है कि एक मरतबा हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, लोगों के भाग भाग कर चलने की आवाज आने लगी। अचानक नमाज खत्म करने के बाद हजूर ने लोगों से पूछा, ये कैसी आवाज थी? इन लोगों ने अर्ज किया, हम नमाज में शामिल होने के लिए भाग कर आ रहे थे। फरमाया, ऐसा न किया करो, नमाज के लिए जब भी आओ पूरे सुकून के साथ आओ, जितनी मिल जाए इसको इमाम के साथ पढ़ लो, जितनी छूट जाए वो बाद में पूरी कर लो। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। इससे क्या बात पता चलती है कि जैसे आप देखें कि यहाँ पे मस्जिद में हम जुमे की नमाज पढ़ते हैं और बाजू का सीढ़ियों में से दड़ 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 की आवाज आ रही होती है बहुत तेज, और बाज अवकात लोग जल्दी जल्दी जो है वो कर रहे होते हैं। तो इस हिस्से में हमें इस हदीस की रहनुमाई से क्या बात पता चलती है कि सुबह से ये तमाम करना है ना जुमे का, तो जब हम वक्त पर आएंगे तो वक्त पर पहुंच जाएंगे। तो हम जब खुतबा हो रहा है तो उसमें कोई भी जो है वो शोर या गल उसका सबब नहीं बनेंगे, उसकी डिस्टरबेंस का सबब नहीं बनेंगे, और ये नहीं कि फिर अब हमें भागना पड़ेगा। तो एहतमाम से आना चाहिए, और अगर किसी वजह से, किसी उजरे शरई की वजह से ताखीर हो भी जाए तो भी भागना नहीं चाहिए, आराम से जो है वो आना चाहिए। अच्छा, खरीदो फरोख्त छोड़ने के मानी बाज लोग ये समझते हैं कि सिर्फ तिजारत छोड़नी है, जॉब छोड़नी है, और वो दूसरी मसरूफियात को नहीं छोड़ते। तो आप ये बात याद रखें कि जब तिजारत छोड़ना उसका हुक्म दिया जा रहा है तो इसके ये मानी है कि आप अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको छोड़कर जो है, यानी आपकी जो भी मसरूफियत है उसको छोड़कर जो है वो आप जुमे की नमाज के लिए जो है वो पहुंच जाए। अच्छा, जुमे के और भी जो है वो कुछ इसकी फजीलतें हैं, उनमें से एक अहम ये है कि जुमे की रात या दिन में सूरत कहफ की तिलावत मुस्तहब है। आज आपने सूरत अल कहफ सुनी, आप में से कितने लोग हैं जो जुमे के दिन सूरत अल कहफ पढ़ते हैं? माशाल्लाह, हमारी काफी बहनें हैं जो पढ़ती हैं। इस सिलसिले में आप ये खुशखबरी सुन लीजिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन सूरत कहफ पढ़ता है तो दो जुमे के दरमियान इसके लिए नूर चमकता रहता है। कितनी खूबसूरत हदीस है ना, कि जुमे के दिन जो पढ़ता है तो दो जुमलों के दरमियान उसके लिए नूर चमकता रहता है, और हमें तो नूर की और रोशनी की बहुत जरूरत है, और ये नूर है ईमान का नूर, ये नूर है अमले सवाले का नूर। तो आइए दिलों के अंधेरों को रोशनियों में तब्दील करें, नूर में तब्दील करें। और दिलों में क्या है? कुफ्र, कीना, कुदूरत, नफरत, बुग्ध, हसद, दुश्मनी, और न जाने दिल किस किस चीज से भरे हुए हैं। तो दिल एक बर्तन की तरह है, और दिल में उस चीज को भरे जो बहुत कीमती है, और वो है ईमान की दौलत, वो है अमले सवाले की दौलत, वो है इस्लाम से, अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की दौलत। तो ये जो नूर होता है, ये किस चीज का नूर है कि दो जुमे के दरमियान इसके लिए नूर चमकता है? तो असल में ये ईमान का नूर है, ये अमले सवाले का नूर है। और आप देख लें कि सूरत कहफ में क्या कहानियां सुनाई गई हैं, असाबे कहफ की भी कहानी सुनाई गई। असाबे कहफ कौन थे जिन्होंने अपने ईमान को बचाने के लिए एक गार में पनाह ली, जिन्होंने अल्लाह से दुआ की, जिन्होंने अल्लाह से दुआ की, और क्या दुआ की कि जालिम बादशाह जो है वो हमारे पीछे पड़ गया है और अब हमारी जान का दुश्मन बन गया है। और उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि ए अल्लाह, अब तू जो है हमारी हमें रहनुमाई कर और हमारा ईमान जो है तो उसको बचा दे। अब आप देख लें, ये सूरत अल कहफ की आयत है और आयत नंबर 10 अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, इज अवल फितियतु इलल कहफ फकालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। जब नौजवानों ने एक गार में पनाह ली और वो बोले रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, अल्लाह अपने पास से हम पर रहमत नाजिल कर, हमें रहमत अता कर, वहय्यि लना मिन अम्रिना रशदा, और हमारे लिए अपने पास से जो है वो रुश्द दे दे, रुश्द तैयार कर, रुश्द दे, रहनुमाई दे। हदायत के मानी होते हैं कि सीधे रास्ते की तरफ किसी की रहनुमाई हो और वो उस पर चलना शुरू करे, और रुश्द के मानी होते हैं कि चलता रहे, रास्ते में जो रुकावटें आए, तकलीफें आए, आजमाइशें आए, फिर वो हदायत के रास्ते को छोड़ ना दे। तो हदायत भी मांगी उन्होंने और रुश्द भी मांगी। तो क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम भी असहाबे कहफ की तरह अपने ईमान की हिफाजत करें। आज का दौर अगर देखें तो उम्मत मुस्लिमा के लिए ऐसे ही है जैसे कि असहाबे कहफ के लिए वो जमाना था। हर तरफ मुसलमानों के लिए जो है वो गम और परेशानियों के पहाड़ हैं। कहीं मुसलमान नाम की वजह से जॉब नहीं मिलती, उसको ले ऑफ कर दिया जाता है, कहीं उसको दाढ़ी कटवाने के लिए कहा जाता है, कहीं निकाब हिजाब जो है उसको बैन करने का ऐलान किया जाता है, और कहीं उनको देखकर जो है वो टेररिस्ट का नारा जो है वो लगाया जाता है। और बजाहिर ऐसा महसूस होता है कि मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में जो है वो गम के बादल जो है वो छाए हुए हैं। लेकिन एक बात याद रखे, मुसलमान कभी डिप्रेशन में नहीं जाते, मुसलमान नाम है एक उम्मीद का, एक लगन का और उभरने का, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबादोगे। और दूसरी अहम बात, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मुसलमान कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। तो असहाबे कहफ तो मायूस नहीं हुए थे, उन्होंने अपने ईमान को कैसे बचाया था? और वो कौन थे? वो जवान थे, वो यूथ थे। किसी भी कौम का सरमाया उसकी नौजवान नस्ल हुआ करती है। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि उसकी कौम में से चंद नौजवान थे जो उस पर ईमान लाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले भी ज्यादातर जो थे वो मुसलमान थे, मुसलमान जो थे ज्यादातर नौजवान थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले भी ज्यादातर नौजवान थे, और चंद एक थे जो कि बूढ़े भी थे, लेकिन ज्यादा मेजोरिटी जो थी वो नौजवानों की थी। तो मेरी प्यारी बेटियों, मेरी प्यारी बहनों, हम सब की क्या जिम्मेदारी बनती है कि जुमे के दिन जो है हम सूरत अल कहफ का एहतमाम करें। और एक हदीस से तो ये भी पता चलता है कि सूरत अल कहफ जो शख्स जुमे के दिन पढ़ता है तो इसके पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला जो है वो इसके गुनाह माफ कर देते हैं जो एक जुमे से दूसरे जुमे तक उसने किए होते हैं। फिर जुमे के दिन की एक अहम फजीलत क्या है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ो। आपने फरमाया कि जुमे के दिन और रात कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ा करो, जो इसकी तामील करेगा मैं कयामत के दिन इसके लिए गवाह और सिफारशी बनूंगा। इससे क्या बात पता चलती है कि जुमे के दिन जो दुरूद पड़ेगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन इसके लिए सिफारशी बन जाएंगे, इसके लिए जो है वो गवाही देंगे। तो जुमे के दिन जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ना और कसरत से पढ़ना, इसका बहुत ही अजर है, इसका बहुत ही सवाब है। और हालांकि कुरान मजीद में सूरत अहजाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि अल्लाह और फरिश्ते जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, ऐ ईमान लाने वालों तुम भी रसूल पर दुरूद भेजो। तो हमें जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो कसरत से दुरूद भेजना चाहिए। और आपको पता है कि कौन कौन है जो ये चाहता है कि उसकी दुआएं कबूल हों? हम सभी चाहते हैं ना हमारी दुआएं कबूल हों। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर जो है मैं जैसे कि मैं हज के लिए जाऊं और अल्लाह से दुआ मांगूं कि मेरी दुआ कबूल हो जाए, तो मैं ये कहूंगा कि अल्लाह तू मुझे मुस्तजाबु दावात बना दे, ऐसा बना दे जिसकी सारी दुआएं कबूल हों। कितनी खूबसूरत उन्होंने दुआ मांगी ना। तो हम में से हर शख्स ये चाहता है, उसका दिल तड़पता है कि अल्लाह मेरी दुआएं कबूल हों। तो जो ये चाहते हैं कि उनकी दुआएं कबूल हों तो वो कसरत से दुरूद पढ़े, क्योंकि दुरूद पढ़ने की वजह से जो है वो दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह की हम्द और रसूल अल्लाह पर दुरूद भेजना। फिर एक और जुमे की अहमियत है, बड़ी खूबसूरत बात है कि जुमे के दिन कसरत से दुआ करना बेहतर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई कि इस दिन में एक घड़ी दुआ की कबूलियत की घड़ी है, जो इस वक्त में दुआ करता है अल्लाह सुबहाना हुआ ताला उसकी दुआ कबूल करता है और वो जो मांगे उसको देता है। हम तो जरूरतमंद है, हम फकीर, हम मोहताज और अल्लाह गनी, हम तो सरापा एहतियाज है, हमारी तो जरूरतें हैं। कहीं बच्चों की शादी का मसला है और कहीं जॉब नहीं मिल रही, कहीं बीमारी है और कहीं जो है वो दुखों और परेशानियों ने हमारे घरों में डेरे डाल दिए हैं। तो दुनिया में देखें तो हर शख्स परेशान हाल नजर आता है, और सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी मुसीबत और सबसे बड़ा अगर कोई अलम है और वो ये है कि हमारे हमारी पीठ पर और हमारे कंधों पर गुनाहों की गठरियां हैं। कयामत का दिन, हशर का मैदान और गुनाहों की गठरियां, तो हमारा हाल क्या होगा, हम क्या करेंगे? तो हमें क्या करना चाहिए कि जुमे के दिन ज्यादा से ज्यादा दुआ मांगनी चाहिए। ये सही मुस्लिम की रवायत है कि जुमे के दिन में एक ऐसा वक्त आता है कि जब कोई मुसलमान अल्लाह का बंदा इसमें अल्लाह इज्जोजल से अच्छाई का सवाल करे तो यकीनन उसको देता है, कि जो भी दुआ मांगे ना वो कबूल होती है, लेकिन वो एक घड़ी है। अब वो कौन सी घड़ी है? बाज रवायात में है कि ये वक्त इमाम के खुतबे के लिए आने से नमाज से फारिग होने तक के दरमियान में है, और बाज का यह कौल है कि यह असर के बाद का वक्त है। इसे मुस्नद अहमद और इब्ने माजा ने रवायत किया है। तो जुमे की वाजिब होने की जो शरायत है, मर्द होना, औरत पर जुमा जो है वो वाजिब नहीं है, आजाद होना, गुलाम पर भी जुमा वाजिब नहीं है, इसी तरह बालिग होना, नाबालिग पर भी जुमा वाजिब नहीं है, और तंदुरुस्त होना, बीमारी की वजह से अगर कोई जुमे में शरीक नहीं हो सकता तो उस पर भी जुमा वाजिब नहीं है, मुकीम होना भी, क्योंकि मुसाफिर पर जुमा वाजिब नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे, जुमे के दिन की अहमियत और फजीलत के पेश नजर इसका एहतमाम करने वाला बनाए, और इसके साथ ही जो है वो जुमे के दिन हमारे सारे लोग जो कि कॉलेजेस में हैं या स्कूल में हैं या कहीं अपने दफातर में हैं और उन पर जुमा फर्ज है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसका जो है वो एहतमाम करें। तो मुसलमानों के लिए हर जुमा जो है वो गुड फ्राइडे है, ग्रेट फ्राइडे है, सिर्फ वो नहीं कि आज के दिन जो है यहाँ पे छुट्टी है। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल करने वाला बनाए, हम सबके गुनाहों को माफ करे, हम सबसे राजी हो जाए और हम सबको अपने उन पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले جن کی بخشش کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بھی جمعے کے دن کی جتنی اہمیتیں اور فضیلتیں ہیں ہم سب کو عطا کر دے, تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے, تو ہم سب کو جمعے کے دن کا شعور دے دے, اور اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. یا رب العزت آپ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنب فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت اعوذ بک من شر ما صنعت. یا رب العزت تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے, تو ہم سب سے راضی ہو جا, اور اے اللہ تو ہم کو ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے لیے فرشتے بھی دعائیں استغفار کرتے ہیں, اور اے اللہ تو ہمیں وہ گھڑی دے دے جس دن جمعے کی اس گھڑی میں جس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور یہ وہی گھڑی ہو جو کہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے, اور اے اللہ تو ہم سب کی نیک اور جائز خواہشوں کو قبول کر لے, اور اے اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمیں کلمہ نصیب ہو. یا رب العزت ہم سب کے والدین کی مغفرت کر دے. یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت کر دے. اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کر دے, اور جو زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت کر دے. جن کے گھروں میں جوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان کو اچھا نیک رشتہ دے دے, اور یا اللہ تو ہماری جو نسل ہے نوجوان نسل ان کو لٹنے سے بچا لے. یا رب العزت تو ان کے ایمان کی حفاظت کر. یا رب العزت تو ہم سب کو اچھا مسلمان بنا. اے اللہ یہ مغرب کی دنیا میں رہتے ہوئے ہم سب آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی ہی نہیں اپنی نسلوں کی فکر ہے, بی بی مریم کی والدہ کی طرح. اے اللہ ہم اپنی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو اور ان کی اولاد کو, ہم اپنی نسلوں کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں اور ہماری نسلوں کو شیطان مردود سے بچا لے. اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ رزق حلال کے دروازے کھول دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.